क्या हुआ मोहतरमा बाबाई, आप उस कारखाने में बेहोश कैसे पाई गईं? आप वहां कर क्या रही थीं?
अजनबी लोगों की नजर मेरे शौहर पर है, उनका आना जाना ज्यादा है। वो आकर जिंदा या मुर्दा होने की खबर लेते हैं। उन्हीं में से एक के पीछे मैं गई। मैंने पूछा कि मेरे शौहर के जिंदा या मुर्दा होने के बारे में क्यों पूछ रहे हो, तो तेजी से गाड़ी स्टार्ट की और निकल भागा। उसका पीछा किया और जगह का पता चलाया। वो अपनी पैदावारी यूनिट में था जो कि उसी आदमी की है। उसका नाम पर्दा याकूत है।
शादी का हाल हाल चलो, पर्दा याकूत के घर का पता बड़ा है मेहरबानी।
जब 5 साल के हुए तो मैंने कहा अच्छी शक्ल व सूरत का लड़का है, मगर जब ये पता नहीं कि बाप कौन है मां कौन है तो कैसे पता चलेगा कि किसकी शक्ल पर गया है। ठीक है, जब तुम 6 साल के हुए तो तुम्हारा नाम मैंने रखा काव्य। उसके पहले सब तुमको ओ के नाम से पुकारते थे, याद है? जब तुम 12 साल के हुए तो देखा कि बाबक के दोस्त बन गए हो, इसलिए मैंने तुमको उससे अलग करके कहा खूब अच्छी तरह अपने दिमाग में बैठा लो कि जब मेरे घर वालों के साथ चल रहे हो तो जान लो कि तुम भी वही गोश्त और मुर्ग खाते हो जो वो लोग खाते हैं, मगर तुम उन लोगों के बराबर नहीं हो। मैंने कहा रोजाना 18 मरतबा इस बात को दोहराओ, याद है? नहीं, याद नहीं है। मैंने एक जगह तुम्हारी सरपरस्ती में भूल कर दी। जो बातें जिंदगी में सिखाई थी वो तुमको याद नहीं होंगी। याद नहीं रह गया इसलिए अपनी हद से गुजर रहे हो बच्चे? बच्चे, मेरी जिंदगी के सभी लम्हों में ध्यान मेरा घर वालों पर रहा है। एक बात समझ लो, अगर सिर्फ पैसों की खातिर होता तो मेरे पैर अदालत तक नहीं उठते, समझे? से 1000 साल बाद के लिए भी तुम्हें अपने घर वालों के आसपास न देखूं, अगर देख लिया तो तुम्हारे ऊपर से इस तरह गुजर जाऊंगा कि तुम्हारे वजूद का भी पता नहीं लगेगा। उम्मीद है तुम ये बात याद रखोगे।
आज दोपहर को एक बार फिर आपकी बेटी की तरफ से इत्मीनान हासिल करके यहां आया हूं। ये रही गाड़ी की चाबी जो आपने मेरे लिए खरीदी थी, ताकि घर वालों को लाना ले जाना कर सकूं। ठीक है, बहुत अच्छा जनाब शाइस्ता, अब आपके घर के इर्द गिर्द नजर नहीं आऊंगा।
ठीक है,
बस इतना ध्यान रहे कि मैं रोया को आप या आपके खानदान में शुमार नहीं करता हूं। आप में जितनी ताकत है लगा लें
मुझे रौंदने और मिटाने के लिए, मैं पीछे नहीं हटूंगा।
मामू जान, काव्य को मुझ पर छोड़ दें,
तुझ पर, तुझ जैसे बेवकूफ पर।
मेरे डैड कहाँ हैं?
मर्दों में होंगे।
ये खाना कहाँ ले जा रही हो?
हाँ, नीचे पूना और उसके भाई के लिए।
मुझे दीजिए, मैं ले जाती हूँ।
काला कपड़ा कमरे में रख दिया है, पहले पहनो फिर जाओ।
सलाम।
सलाम, ये लो। फातिहा खानी, मेहमान ऊपर हैं। मैं बाबा की फातिहा खानी में शरीक होना चाहती हूँ।
जाने की जरूरत नहीं है।
क्यों?
बैठो, मेरी बात सुनो।
तुम बताओ आखिर क्यों?
मैंने अकरम को कहा उस हार को बेचना बाबा की फतिया खाने के लिए इधर उधर से कर्जा लेने से कहीं मुनासिब था। मैं तुम्हारे इस काम को चोरी करार नहीं दूंगा। अगर सोना जब इज्जत आड़े आए और काम ना आए तो किस काम का?
क्या ये सच है? अब ये अहमियत नहीं रखता, जो भी सोचना है सोचो।
मैंने कहा ना तुम ऊपर नहीं जाओगी।
क्यों?
बेवकूफ अकरम की वजह से।
क्या हुआ?
ये मोहतरमा जो हमें पूरी तरह से जानती है, इनको भी जान लेने दो। उस अकरम ने मिनी बस में माँ के कानों इस कदर पिचपिच किया कि इस फतेह खाने का पैसा हलाल का नहीं है, कि पूना ने अपने बाबा की जान ली है और अब चोरी के हार के पैसे से फतेह खाने का खर्चा उठा रही है। तो मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं। उसकी बातों से मेहमानों के कान खड़े हो गए। पूछने लगे कि क्या हुआ कि पूना ने तुम्हारे बाप को मार डाला? पूछो मत कि क्या इज्जत खराब की, हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। देखो जिस चीज का डर था बिल्कुल वही हुआ है। कल को जब उनके घरों में चना और छुहारा जाएगा तो लोग यही बोलेंगे ना कि ये पूना और हमारे घर से आया है। जाने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठे रहो।
मैंने अगर अपने बाबा को मारा है तो गोया खुद को मारा और यतीम कर लिया। लोगों को जो बोलना है बोलें, मैं जो भी हूं, बुरी भली हूं, जिस घर में भी रहती हूं उसका पता ठिकाना मेरे बाबा को भी था। अब मेरे पीठ पीछे जो भी कहना हो कहें, अहमियत नहीं रखता।
अहम नहीं है? अहम है, अहम है, क्योंकि लोग तुम पर उंगली ना उठाएं। हाँ, तुमने खुद को यतीम कर लिया, मुझे यतीम कर दिया। पूना, तुमने बहुत बुरा किया। कोशिश ना करो खुद को हक बजाने जाहिर करने की, क्योंकि तुम हो नहीं। बाबा की कसम तुम हक पर नहीं हो।
अब मैं बिल्कुल ही उन चीजों को लेकर झगड़ा नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मोहसिन मेरी बात का यकीन करो। खुजिस्ता, तुम यकीन करो, मैंने अपने बाबा की फातिहा खानी में लोगों को हराम खाना नहीं खिलाया है। जब पैसा पत्थर के नीचे दबा होने पर भी हवा में उड़ गया तो उसका ये मतलब हुआ कि खुदा नहीं चाहता था कि यह पैसा मेरे बाबा पर खर्च हो। फातिहा खानी का पैसा हलाल का है,
जायज है,
मैंने वो हार नहीं चुराया है, मैंने अपने बाबा की रूह को नहीं तड़पाया है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये मेरा हक है कि मैं बाबा की फातिहा खानी में शरीक हूं। क्या ये मेरा हक नहीं?
बिल्कुल है। अपना हाथ नीचे करो।
सलाम।
ये लो अजीजम।
शुक्रिया तुम्हारा, खुदा उनको बख्श दे, खुदा हम सब को राह रास्त पर चलने की हिदायत दे।
बहुत बहुत शुक्रिया।
उन पर खुदा की रहमत हो। हम सबकी आकिबत बखैर हो इंशाल्लाह।
खुदा उनको बख्श दे।
शुक्रिया।
खुदा मगफरत करे।
पूना जान, तुम्हारी नजर कबूल हो, खुदा तुम्हारे वालिद को बख्श दे। तुम्हारे कुर्बान जाऊं बेटी, फिर कभी गम नसीब ना हो।
तुम्हारा ये गम आखिरी हो अजीजम।
ये आखिरी गम हो
अजीजम, ये तुम्हारा आखिरी गम हो। ये आखिरी गम हो। आखिरी गम हो। ताज़ियत पेश करती हूँ।
अब तुम्हें कभी दुख नसीब ना हो।
خدا مغفرت کرے.
شکریہ.
آپ کی خدمت میں ہوں.
بہت بہت شکریہ.
خدا رحمت کرے.
جی بہت شکریہ.
شکریہ.
سلام. تعزیت پیش کرتا ہوں. تمہارے بابا کی مجلس کا نمک کھا چکا ہوں. وہ بڑے اچھے آدمی تھے, بہت اچھے. میں ان کا کسٹمر تھا بھائی.
اچھا, لیکن میں نے تو کبھی نہیں دیکھا.
میں نے کہا ان کا کسٹمر تھا, یہ نہیں کہا کہ پڑوسی ہوں.
فوجی ٹریننگ میں ہو؟ کتنے مہینے رہ گئے؟
معاف کرنا, تمہیں تکلیف دی اس کی معافی. میں نے تمہارے شوہر کے بارے میں سنا. انشاءاللہ کہ تندرست اور بے گناہ اسپتال سے باہر نکلے. اور شکریہ کہ پونے کا خیال رکھتی ہو.
اس کی واپسی کے لیے ضد نہ کریں, وقت آنے پر وہ خود لوٹ آئے گی.
ابھی اس کے لیے کام کا بندوبست کر رہی ہوں اسی گھر میں, اس پر ہمارا دھیان ہے.
سلام. آئیے تشریف لائیے, ٹیکسی.
اچھا اجازت دیں, خدا حافظ.
آئیے تشریف لائیے.
فی الحال خدا حافظ.
میرے ڈیڈ ہوں گے, اس وقت سے اب تک مردوں میں تھے نا. ہاشم خان میرے ڈیڈ نہیں آئے؟
بے چین اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, انشاءاللہ سب اچھا ہوگا.
تمہارے ڈیڈ نے جہاز کا ٹکٹ لیا اور چلے گئے. مطلب یہ کہ کیسے کہوں, تمہاری ماں.
میری ماں کیا؟ ہلو متین.
خجستہ تم ہو؟
ماں کو کیا ہوا ہے؟ میں تم سے پوچھ رہی ہوں.
دل کا دورہ پڑا ہے.
دورہ؟
ہم لوگ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے, جیسے ہی ان کی چائے ختم ہوئی انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا, پھر کچھ نہیں بولی. ہم نے فوراً اسپتال پہنچایا, وقت پر اسپتال پہنچ گئی.
وقت پر کیا مطلب؟
یہ کہ ابھی ان کی طبیعت ٹھیک ہے.
اسپتال کا فون نمبر دو, اگر ان کی حالت ٹھیک ہوگی تو بات کر سکیں گی نا.
اتنی بھی ٹھیک نہیں ہے کہ بات کر سکے, بس خطرہ ٹل گیا ہے. تمہارے ڈیڈ ابھی اہواز پہنچے اور اسپتال چلے گئے. تمہاری قسم سچ بول رہی ہوں, خطرہ ٹل گیا ہے. تمہارے ڈیڈ آئیں گے تو بولوں گی فون کر لیں. تم اپنے شوہر کے پاس ہی رکو, یہاں سبھی لوگ ہیں تمہاری ماں کے آس پاس. یہ احمد رضا ہے جس کے پاس کوئی نہیں ہے. اپنے حالت کے بارے میں بتاؤ, احمد رضا اور اس شائستہ کے بارے میں جو پیسوں کا طالب ہے.
دوپہر کو اس نے مجھے اطمینان دلا دیا تھا. بچوں کی ایک ایسی تربیت کی تھی ناہید, یہ کون سا طریقہ تھا پرورش کرنے کا.
میں اپنے باپ کا ہم شکل ہوں. ہاں یہ بات وہ بھی اچھی طرح سے جانتا ہے. ایک دن ماننے پر مجبور کر دوں گا. ہیلو رویا, گھر کے کس کونے میں کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہی تھی جب میرے منہ پر تھپڑ لگا؟ ہاں
آ
कोने में थी जब मैं जमीन पर पड़ा हुआ था। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ।
क्या हुआ? मैं घर पर नहीं हूँ, समसामी अंकल के घर पर हूँ। यहाँ आ गई थी कि डैड।
डैड क्या मारे नहीं, कत्ल ना करें।
और तुम समसामी के घर क्या कर रही हो? तुम मैदान में कूदो, मैदान के बीच में तुम्हारा डैड है, थप्पड़ है, फरियाद है। मैदान के बीच में हम दोनों हैं, हमें एक दूसरे से बात करनी होगी,
एक दूसरे की बात सुननी होगी।
रोया मुझे मजबूर ना करो,
अपने बाप के आगे शर्मिंदा ना करो मुझे,
मुझे अपने डर से कमजोर ना करो, ना करो, ना करो। मजे करो मेरी माँ, खुशी बनाओ।
ऊपर आ जाओ बाबक।
हेलो।
हेलो बाबा, कहाँ हो?
रोया को लेने के लिए आया हूँ। क्यों?
मत लाओ, तुम्हारी डैड ने पूरे घर को उलट पुलट कर रख दिया है।
सलाम।
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 क्या हुआ?
वल्ला मैं आया था कि रोया को लेकर जाऊं। अभी फातिमा ने फोन करके कहा कि मत लाओ, बताया डैड ने हंगामा मचा रखा है।
चलो रोया को यहीं छोड़कर चलते हैं।
चलिए।
तुम कमरे में जाओ, मैं और बाबक जाएंगे।
आप कब तक सब कुछ ठीक करते रहेंगे? कब तक ऐसा होता रहेगा? एक खानदान कब सब कुछ ठीक करेगा? चलो चले।
कहां?
मार्के के बीच में।
मैं देखो, जैसा कि मुझ में नजर आता है, इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं। हाँ, आज की रात जो तुमने दस्तरखान पर मेरे लिए किया, समझ गई कि तुमने मुझे शर्मिंदा नहीं होने दिया। बता रहे हैं कि तुम्हारी मां की तबीयत अभी ठीक है।
हाँ, लेकिन मैं उनके पास नहीं हूं,
क्योंकि तुमको अपने शौहर के पास रहना जरूरी है। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि आकर तुम्हारे शौहर को देखूं। लंबा कद है।
जब तुम शादी कर लोगी तो पता चलेगा कि एक मुद्दत बाद इन चीजों की कोई अहमियत नहीं रह जाती।
हाँ, मुझसे कौन करेगा शादी?
अभी तुम्हारे शौहर का क्या होगा? नहीं मालूम। सबसे पहले खुदा है, फिर बाद में भी खुदा।
मैंने अगर 8 अरब लिए होते तो किसी भी इश्क या पेट में बच्चे की खातिर वापस लौट कर नहीं आती। क्या तुम ये समझती हो कि तुम्हारे शौहर की वापसी में बदकिस्मती शामिल थी?
क्या मतलब?
शायद किसी हादसे की वजह से ना भाग सका, शायद कोई साथ में पार्टनर था उसने धोखा दिया, शायद किसी चोर ने हाथ साफ कर दिया, शायद।
तुम ये कहने पर क्यों इसरार कर रही हो कि मेरे शौहर ने 8 अरब लिया होगा? हाँ,
क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि अगर लिया भी होगा तो कोई हर्ज नहीं है, इत्तफाक से प्लानिंग सही थी। उस शाइस्ता ने एक मुद्दत तक खाया पिया, अब ना होने के वक्त का भी तजुर्बा कर ले।
इसका मतलब तुम उन लोगों का बटवा इसलिए चुराती हो क्योंकि उनके पास है? हाँ, तुम्हारे हिसाब किताब की दुनिया किस कदर खौफनाक है पुना।
दुनिया डरावनी है, जिसके पास है वो उसे निगल जाते हैं, जिसके पास नहीं है। मेरे बाप जैसे गरीब लोगों को भी निगल लिया, और जैसा कि वो दफन हो चुके हैं। मैं नहीं चाहती कि निगली जाऊं। अगर तुम ये चाहती हो कि दुनिया तुम्हें ना निगले तो उसको बेरहम समझो।
अगर दफन होना नहीं चाहती हो।
तुम्हारे वालिद दिल्ली नहीं गए? उन्होंने 60 साल जिंदगी गुजारी, काम किया, खानदान तश्कील दिया। कभी पैसा था तो कभी नहीं था, कभी खुश थे तो कभी खुश नहीं थे, दूसरे आदमियों की तरह। फिर दुनिया से चल बसे दूसरों की तरह। इससे बेहतर फितरी तरीका कोई और नहीं है। क्या है? है? खुदा से अच्छा हिसाब किताब वाला नहीं देखा, वो किसी का मकरूज नहीं है।
ठंडा है, कोई खबर नहीं है जनाब। क्या हुआ जनाब? क्या ये वही फर्जीन नहीं है, पोल्ट्री फार्म वाला आदमी? चलो।
अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अंदर नहीं जाता।
मेरे कमरे में आओ। दरवाजा। कावे बता रहा था कि उसने आज दोपहर को तुमसे फोन पर बात की। वो तुम्हारी मर्जी से मेरे पास आया था कि तुमसे शादी की दरख्वास्त करे। क्या ये सही है?
उस रात लॉन में आपने खुद मुझसे कहा कि मेरी चाहत से आप मुवाफिक हैं। मां हमेशा कहा करती थी कि
नहीं बेटी, मां के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी मां अभी मनोमिट्टी के अंदर दबी पड़ी है। तुमने ध्यान नहीं दिया कि मैंने क्या पूछा। मैंने किसी रात के बारे में नहीं पूछा, आज दोपहर के बारे में पूछ रहा हूं। मैंने कहा, कावे ने बोला कि आज दोपहर को उसने तुमसे रابطہ कायम किया और वो तुम्हारी मर्जी से मेरे पास शादी की बात करने आया था। क्या ये सही है?
डैड, मैं कोई भी जवाब देने से पहले आपको इतना बताना चाहती हूं कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूं। मैं ये कहना चाहती हूं,
मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, मगर पहले मेरी बात का जवाब दो। कावे ने क्या आज दोपहर को तुमसे राबता कायम किया और तुम्हारी इजाजत और मर्जी से मेरे पास आया?
मेरी मर्जी से आया था।
اقتصادی امور کے رپورٹر کے مطابق آج سونے کی مارکیٹ میں خالص سونے کی قیمت اس حالیہ ہفتے میں سب سے زیادہ اونچائی پر پہنچ گئی ہے۔ اقتصادی ماہرین اس قیمت میں اچھال کو عالمی منڈی میں سونے کی قیمت میں اضافے کی وجہ مانتے ہیں۔
क्या अनुज तुम हो? मुझे एक गिलास पानी ला कर दो। तुम्हारे मामू परवेज की क्या खबर है?
कुछ नहीं।
अल्लाह,
जनाब क्या आपका मोबाइल शोबाइल बंद है? जनाब वाह वाह, देखो मेरे भाई, तुम्हारे लिए मैंने सारी जानकारी हासिल कर ली है। एक औरत के घर में वो रहती है जिसका नाम कंबर है, दो दूसरी लड़कियों के साथ। उनमें से एक के पास रेनू गाड़ी है। उस घर में एक के वालिद की फातिहा खानी में उसके भाई से मैंने बात की है, उसी रेनू गाड़ी वाली के भाई से। उसके यहाँ खाना भी मैंने खाया। हाँ, अर्ज है, उस लड़की के भाई का नाम मोहसिन है। उसे दो नंबर का पैसा कमाने से एतराज भी नहीं है। हाँ, ये बात बताइए, शायद तुम्हारे काम आए। ये बात तुम्हारे काम आई?
हाँ, मेरे काम आया।
और हमें जो कुछ भी कुरान के जरिए नाजिल किया, अहले ईमान के लिए दिल की शिफा और रहमत इलाही है, और काफिरों को सिवाय नुकसान के और कुछ हासिल ना होगा। और हमने इंसानों को हर तरह की नेमत अता की, उसने उनसे मुंह फेरा और दूरी इख्तियार की, और जब कभी उस पर बला और मुसीबत नाजिल हुई वो पूरी तरह मायूस और नाउम्मीद हो गया। तुम लोगों को बता दो कि जो कोई अपनी ज़ात और फितरत के मुताबिक अमल अंजाम देगा
तो तुम्हारा खुदा बेहतर इल्म रखता है कि कौन बेहतरीन राह हिदायत पर है।
एक फोन कार्ड। नर्स, क्या सब कुछ ठीक ठाक है? क्या मेरा शौहर ठीक है?
एक 150 शॉक। القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً.